ओम शांति। हम सबके बीच परम आदरणीय राजयोगी करुणा भाई उपस्थित हैं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत 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 अभिनंदन। बहुत बड़ी विशेषता है राजयोगी भ्राता करुणा जी में। इस यज्ञ की फाउंडर, इस यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ प्रबंधिका माँ जगदम्बा और पिता श्री के साथ जीवन का स्वर्णिम बसंत व्यतीत किया उन्होंने। और इस समाज में जिसको लोग कहते हैं कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, बड़ा श्रेष्ठ समाज है, सिविलाइज है, बड़ी उनको सम्मान की नजरों से देखते हैं। भाई साहब जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उन्हें उस परमात्मा का, सबसे बड़े इंजीनियर का परिचय मिला। लोग सोचते हैं डिग्री हाथ में आ जाए तो रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए, लेकिन भाई साहब को परमात्मा प्राप्ति हुई और कहाँ की रोजी और कहाँ की रोटी, सब कुछ यज्ञ हो गया। भ्राता जी माउंट आबू पधारे और जिस दिन से मैंने उन्हें देखा है, निरंतर आपने अनेक पदों पर अपनी सेवाएं दी। आपने प्रारंभ किया पीआरओ के उससे, और वो इतना बड़ा रोल है समाज के और संस्था के बीच एक साकार और श्रेष्ठ छवि बनाने का, वो भाई साहब ने की। इतना ही नहीं किया, यहाँ जिन सोफों पे आज आप बड़े शौक से बैठे हुए हैं, ये भी अगर सच पूछिए तो उनकी देन है। उन्होंने सबसे पहले यज्ञ में थोड़ा स्तर बढ़ाया, दादी जी को निवेदन किया और कहीं से सेवा करवाई और हमारे यहाँ ये परंपरा शुरू हुई। दूर संचार का माध्यम जो लोग जेबों में डाले घूम रहे हैं, भाई साहब ने सबसे पहले समर्पित ब्राह्मणों को वो मुहैया कराए। इतना ही नहीं, आज आप देखेंगे हर डिपार्टमेंट में लैपटॉप और कंप्यूटर चल रहे हैं। उस विधा से भी यज्ञ को आपने जोड़ा। विदेश यहाँ जब एकत्र होने लगा उस समय बहुत दिक्कत थी, सैटेलाइट की व्यवस्था आपने करवाई दादी जी से कह के, और आकाश के झरोकों से, जिसे आप आकाशवाणी कहते हैं, दूरदर्शन कहते हैं, घर घर बाबा के ज्ञान को आपने पहुंचाया। संस्कार चैनल की सेवा करके जीवन मूल्यों का प्रचार प्रसार जहां हम नहीं पहुंच सकते, भाई साहब ने टीवी के माध्यम से पहुंचाया। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चेयरपर्सन हैं, इस समय प्रिंट मीडिया भी आप ही देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आज हमारे सेक्रेटरी जनरल के उस पद पर विराजमान हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी का पद है, लेकिन उसके बाद भी आप कभी उन्हें मुखर रूप में नहीं देखेंगे, बहुत अंतर्मुखी रहते हैं। और आज का विषय है अंतर्मुखी सदा सुखी। एक तपस्वी जीवन आपने सदैव जिया, कभी देखा नहीं कि मैं उभर के आया हो, उन्होंने कभी कहा हो मैंने ये काम कराया है। जैसे दादी कहती थी, दादी ऐसा सोचती है, जब भी कभी हमारी दादियों ने, बड़ों ने कुछ ख्वाहिश रखी होगी ऐसा हो जाए, तो दूसरे दिन का सूर्य जब निकलता था तब तक भाई साहब पूरी योजना बना के रख देते थे ऐसे हो जाएगा। तो बहुत 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 धनी हैं त्याग के, तपस्या के, सेवा के। स्वागत है पुनः एक बार जोरदार, हाँ सिंगल नहीं, स्वागत करें और उनके अनमोल रत्न स्वीकार करें।
ओम शांति। पहले पहले आप सबका दिल से मधुबन के तरफ से, मधुबन के जो भी हमारे दीदियां हैं उन सबके तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि मधुबन तो आना सब चाहते हैं, सोचते भी है, प्लान भी बनाते हैं, कईयों ने टिकट भी निकाला हुआ होगा, पर किसी भी कारण से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। पर आप सभी ऐसे लकी आत्माएं हैं, बाबा के नूरे रतन बाबा कहते थे, जो बच्चे यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आप सबका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत। टॉपिक दिया है जो आपकी खुशी को कुछ कम तो नहीं करेगा, क्योंकि सभी मिले हैं यहाँ, भले एक ही सेंटर के बहुत लोग आए होंगे, पर वहां नहीं बात करना होता है, कई बार टाइम पर क्लास आते हैं, क्लास पूरी होते ही वापस जाना पड़ता है हर एक को, पर यहाँ अभी सब मिल रहे हैं, एक से बढ़के एक थोड़ा सा अपना बात करना तो होता ही है, परंतु आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है जो कहते हैं तो अपने आप को अंदर बात करें, अंतर्मुखी कहते हैं। तो मुख दो होता है क्या, एक बाहर मुखी और एक अंतर्मुखी? मुख तो भगवान ने एक ही दिया है, तो फिर ये क्या है जो अंतर्मुखी और बाहर मुखी? पर वो बात भी यहां ही हम समझा है ये कि शरीर का मुख एक और होता है, जो अंदर जो आत्मा है, आत्मा की भी मुख एक और है, जो अंदर ही अंदर बात करता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई ना कोई अपने अंदर ही बात करते रहते हैं, तो आज हम उस बात पर थोड़ा सा सोचना होता है, क्योंकि दुनिया में मालूम नहीं पड़ता है, दुनिया में हम एक दो को देखते ही शुरू हो जाता है, बीके है तो कैसे शुरू करते हैं, ओम शांति, ओम शांति। तो ये तो बाहर मुक्ता की एक शुरुआत है, परंतु अंतर्मुखी वो है कि भाई आज योग का टाइम है, अभी ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, आज भट्टी है, तो उस समय पर हम क्या करते हैं? तो आज मौन का है, तो आज शाम को बाबा आ रहे हैं, तो कहा गया है कि आज तो सारा दिन तो मौन रखना भाई। तो हम सबको दो मुख है, एक है बाहर का जो अभी मैं बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं, कान भी देखो ना, हाथ के साथ नहीं है, मुख के साथ ही है, तो मुख के साथ कान है, तो सुनना भी है, बोलना भी है, देखना भी है, इन सब को बाहर मुक्ता कहा जाता है। ये एक मुक्का है, तो दूसरा मुख भी है जो पहले नहीं मालूम था, तो मैं ही सोच रहा हूं, मेरा ही मन है, तो अब जो कहे कि भाई मेरा ही मन है वो हाथ उठाए, देखो एक भी नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो है अंदर का मुख, जो अंदर आत्मा है, आत्मा का जो मुख है वो मन है। जैसे बोलते हैं तो कोई ज्यादा बोलते हैं, कोई कम बोलते हैं, तो ऐसे मन भी जो है ये भी बोलता है। किसी का तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, कोई कोई तो एकदम शांत रहते हैं। तो मुझे याद है एक रमण महर्षि, एक संत, बड़े संत थे, तो उनसे मिलने कोई VVIP गए थे। वो भी पहले से ही बोल दिया था कि भाई आ रहे हैं आपसे मिलने, परंतु 20 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, उनको वापस अपना कार्य में आना है। तो गए तो बहुत खुशी से स्वागत की उनके और कहा बैठिए। वो हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे एक बार, तो वो बैठे। तो 5 मिनट हुआ, क्योंकि 20 मिनट में तो जाना है, 5 मिनट हुआ तो उन्होंने कहा स्वामी जी। हाँ हाँ बैठिए। तो और 5 मिनट हुआ तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, तो क्योंकि आशीर्वाद लेने आए थे कुछ तो बोलेंगे, तो बोला हाँ हाँ बैठिए बैठिए। इनको पता है स्वामी जी को भी कि ये 20 मिनट के लिए ही आए हैं, पर और 5 मिनट हुआ तो फिर इन्होंने थोड़ा सा कही स्वामी जी, बोला हाँ 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 बैठिए बैठिए। तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, 15 मिनट तो हो ही गया, तो अब 5 मिनट के बाद तो यही कहना है कि भाई मैं जा रहा हूं। तो सचमुच 5 मिनट भी हो गया। वो तो कहा स्वामी जी मुझे आगे प्रोग्राम है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं जा रहा हूं। तो कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो वो तो निकले, पर जाते वक्त सोच रहे थे कि भाई सारे भारत को मालूम पड़ गया है कि भाई आज हमारे VVIP जो है वो रमण महर्षि जी से मिलने गए हैं, कोई आशीर्वाद तो प्राप्त किया होगा जो आके हमको सुनाएंगे। तो सभी बैठे थे निवास स्थान पर, तो जैसे ही पहुंचे तो उनसे पूछा तो आज आपको क्या आशीर्वाद दिया स्वामी जी ने, क्या बोला क्या कहा? तो क्या कहा होगा आप सोच सकते हैं, क्या बोला होगा? तो हमारे VVIP जी ने बताया कि मैंने जो मेरी जिंदगी में पहली बार शांति क्या होता है वो मैंने जिंदगी में कभी, जो अनुभव आज मुझे हुआ वहां वो मुझे कभी भी कहीं भी नहीं हुआ है। तो आप सबको बताया तो होगा कल कि भाई आज बाबा आने वाले हैं, तो जितना हम शांत रहेंगे तो उतना आपको अनुभव बहुत अच्छा होगा। बात तो दुनिया भर में अभी जिंदगी भर करते आए हैं, तो कभी कभी हंसते हुए बोलते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां जब ये आते हैं ना सामने कोई, तो रास्ता बदल लेते हैं कि भाई आते ही शुरू कर देंगे, ये बंद ही नहीं करते हैं। पर आज हम सबको थोड़ा सा अपने आप में बात करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है, तो आप शांत रहने में ये विशेष अनुभव करेंगे, जो हम जहां रहते हैं अपने कारोबार में वहां तो चुप नहीं बैठ सकते हैं, दुनिया ही बाहर की दुनिया है। अब दुकानदार है तो ग्राहक आएगा, बात तो करेगा, तो कोई भी मिलते हैं तो जैसे ही पहले मिलेंगे बात तो करेंगे। पर यहां हमको कहा जाता है कि भाई आज साइलेंस में रहना, क्योंकि आज वो एक बहुत बड़ा वीवीवीवीवीआईपी आने वाली है, तो उनका सुनना है। और वो अनुभव जो है वो जितना हम अपने आप में शांत रहेंगे उतना ज्यादा अनुभव होगा, क्योंकि तो आने वाले जो है तो वो जिनका खुद का मुख नहीं है, तो कभी कभी हमारे दादियां बोलते थे, कभी कभी हमारे प्रकाशमणि दादी जी हंसते हुए बोलते थे, बाबा तो आपको भी हमारे जैसे कोई सिर होता तो मालूम होता सिर दर्द क्या होता है। तो शिव बाबा को तो शरीर जब लेता है तब है, चाहे ब्रह्मा तन में आते हैं चाहे गुलजारदार जी के तन में आए, तो अंतर यही है कि वह खुद का नहीं है, दूसरों का है। मुझे एक सीन सदाई याद आता है, हम जब आते थे मधुबन में पांडव भवन में, 10-15 लोग आते थे तो कहते थे कि आज मधुबन फुल हो गया है, इतना छोटा था पांडव भवन भी, जो आज देख रहे हैं वो पांडव भवन नहीं था। तो बाबा के सामने हम लोग बैठे हुए होते थे, मैं तो 20-21 साल का था उस समय पर, मेरे जैसे ही छोटे छोटे भी आते थे हम सब सामने बैठ जाते थे। तो जब बाबा आते हैं बैठते हैं तो जब गले में थोड़ा सा आवाज बाबा करते थे ऐसा, तो हम एक दो को कहते थे शेर आया शेर आया, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई अब शिव बाबा बोलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा से तो सारे दिन रहते हैं, तो बाबा तो बहुत रॉयल ऐसा साइलेंस में बोलते थे, बहुत कम शब्दों में बोलते थे, तो पर ये शेर तो गरजता है। शिव बाबा का जो मुरली आप सुनेंगे, साकार में भी जो बाबा ने सुनाया अभी भी रिकॉर्ड्स है हमारे पास, वो तो बाबा का तो अलग है, गरजने का होता है। और जब भी बाबा आते ही पहले दृष्टि देते थे थोड़ा सा, तो हमारे चंद्रास बाबूजी एक रिकॉर्ड चलाते हैं, पर रिकॉर्ड शुरू कर किया ही है एक पहला लाइन भी नहीं आया तो बाबा इशारा कर लेते थे तो वो बंद कर देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, तो वो रिकॉर्ड बजा रहे थे तो पूरा हुआ रिकॉर्ड, कभी ऐसा नहीं हुआ, बाबा जैसे ही थोड़ा सा सुन के इशारा दे देते थे वो बंद कर देते थे, फिर बाबा की मुरली शुरू हो जाती थी। पर एक दिन पूरे रिकॉर्ड बज गया, बाबा ने इशारा ही नहीं दिया। पर रिकॉर्ड पूरा हो जाता है तो हमारे जैसे लाइट वाले लाइट सफेद लाइट ऑन कर देते हैं, तो सफेद लाइट भी ऑन कर दिया। तो उसके बाद तो बाबा तो मुरली चलाना ही होता है, पर बाबा ने वाणी नहीं चलाया। हम देखते रहे, हम तो बच्चे छोटे 20-21, ये क्या हो गया आज बाबा मुरली नहीं चला रहे हैं। तो जैसे बेचैनी हमको, और बाबा तो ऐसे बैठे थे साइलेंस में। तो हमने कहा क्या ऐसे कोई भूल हो गई आज हमारी, तो क्या हुआ बाबा मुरली नहीं चला रहा है, मुरली नहीं चला रहा है। हम सब देखते रहे, 5 मिनट हो गया फिर भी बाबा ने मुरली नहीं चलाया। तो हमने कहा अभी आज क्या होगा, बाबा मुरली नहीं चलाएंगे तो दुनिया में सब जो सेंटर्स है जहां वहां मुरली जाता है, तो अब ये क्या होगा। तो हम लोग उसी इसमें नीचे ऊपर हो रहे थे, पर बाबा तो देखो तो अपनी मस्ती में ऐसे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा क्या हुआ आज, क्या बाबा कोई ट्रांस में जा रहे हैं क्या है। तो बाबा तो कभी ट्रांस में जाते नहीं, ना मम्मा गई ना बाबा, तो आज बाबा मुरली क्यों नहीं चला रहे हैं। तो समझो 5 मिनट पूरा हुआ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। तो फिर धीरे से बाबा नीचे आए, तो बाबा ने कहा साइलेंस इज गोल्ड। अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा लगा। पर दूसरी जो बोला वो थोड़ा सा हम लोगों को कहा ये तो गड़बड़ हो गया, क्या हो कहा होगा दूसरा। बोला जो स्पीच है, जो आवाज है मुरली, ये है सिल्वर। तो आप देख लो बाबा क्यों नहीं बोला। तो बाबा सिल्वर में नहीं आना चाहते थे, बाबा को गोल्ड अच्छा लगता था। तो हम सबको साइलेंस में लाने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं कि आज जो सदा गोल्ड में रहने वाले, साइलेंस में रहने वाले शिव बाबा आज आ रहे हैं हम बच्चों को सुनाने के लिए सिल्वर में। तो इसीलिए ये जो साइलेंस है वो अंदर का मुख है, वो भी चलता है, उसका भी अलग है, उसकी तो वर्णन बहुत ज्यादा है। आप समझो एक दिन नहीं बोलते, दो दिन नहीं बोलते, कोई आपको कोई डिग्री नहीं देंगे, वो आनंद एक और है। परंतु जो साइलेंस में रहेंगे मन से, अंदर की मुख से, उसके लिए कहा जाता है मन जीत जगत जीत। पक्का है, मन जीत जगत जीत, माना हम सब योगी बाबा के बच्चों के लिए ये कि हम जीतते मुक्का नहीं। कई आत्माएं देखते हैं हम लोग बहुत कम बोलते हैं, सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनसे हम लोगों को कुछ शांति महसूस होता है। तो जब हम यज्ञ में पहले पहले आए, मैं सन 1960 की बात कर रहा हूं, 1960 का, जब सब दादियां थे, तो ओम शांति भी बहुत स्लो बोलते थे, दादी ओम शांति। क्यों? क्योंकि हम दादी को देख के बात करने की इच्छा नहीं होती है, तो हमको दृष्टि लेने में आनंद आता था। तो जो आज भी आप जब बाबा आएंगे, तो जो बाबा दृष्टि देता है पहले, और हमारे हॉल पूरा होता है, और जहां जहां टीवी लगे हुए हैं, जहां सारी दुनिया में जो भी बाबा का उस दिन टीवी के सामने भी होंगे, सब देखते हैं बाबा दृष्टि दे रहा, और हरेक चुप रह जाते हैं। इतनी आनंद होता है चुप रहने में, बस बाबा की दृष्टि मिले, दृष्टि मिले। आज शाम को देखना आप, 15-20 हजार आए हैं आज, एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, थोड़ा भी कहीं भी आवाज नहीं होता है। ऐसा तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी सभा नहीं है जितना यहां होता है। तो इसीलिए वो जो साइलेंस है, जो अंतर्मुखी सदा सुखी कहते हैं, तो यहां हम बच्चे जो अंदर का जो मुख है, वो मुख क्या होता है, तो उसकी हम लोग अनुभव यहां करते हैं। तो बाबा ने उस दिन सुलाया कि मैं आज मुरली तुरंत क्यों नहीं चलाया, क्योंकि जो बाबा के साथ का जो अनुभव बाबा को हो रहा था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो था ही ना, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की याद में बैठते हैं, तो फिर शिव बाबा आते हैं। तो बाबा जब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के पास गए, जो आनंद साइलेंस का मिला, तो उसी में बाबा मस्त हो गए। तो हम कई बार गुलजार दादी से भी पूछते थे, दादी ब्रह्मा शिव बाबा तो आप में आता है, तन में मुरली चलाता है, पर आप कहां होते हैं? आप तो मुरली सुन रहे होंगे। तो जो बोले कि हां गुलजार दादी भी मुरली सुनते हैं ऐसा समझते हैं, तो वो हाथ उठाए? कोई नहीं उठा रहे हैं। तो आपको भी मालूम है, जब शिव बाबा गुलजार दादी जी के तन में आकर के जो मुरली सुनाते हैं, तो तब गुलजार दादी जी का आत्मा कहां होती है? तो दादी आकर के बोलती थी, जैसे ही दादी अपना तन में आती थी, तो हम लोग हंसते थे, दादी आज आपको मालूम नहीं है बाबा ने क्या बोला, बाबा ने ये बोला ये बोला। तो दादी कहती, अच्छा अच्छा और सुनाओ बोलती थी, क्योंकि उस समय पर जो दादी थी एकदम साइलेंस में रहती थी, बाबा इसको जैसे साइलेंस में ले जाते थे। तो इसी प्रकार हम बच्चों को भी अनुभूति करने के लिए, हम शरीर का बाहर मुक्ता की अनुभव करने के लिए यहां नहीं आए हैं, कि किसका घर कैसे है, किसके पास कौन सी गाड़ी है, इसका बेटा कहाँ है, कितना इनको डॉलर मिलता है, किस ये दुनिया की इसके लिए नहीं। तो यहां हम सब इसीलिए आए हैं, जो हमारा जो दूसरा मुख है, जो हम जो है, ये शरीर को तो मेरा कहते हैं, मेरा हाथ, मेरा सिर, मेरा पांव, पर आत्मा के लिए ऐसा नहीं कहते हैं, मेरा आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूं। तो यहां भले हम सुनते भी है, परंतु वो सुनता हुआ जो है वो हमारे आत्मा में वो रिकॉर्ड हो रहा है। जो मन में, मन बुद्धि संस्कार जो तीन जो है, जैसे कान है, बोलने का है, देखने का है, तो इसी प्रकार आत्मा में भी जो ये तीन शक्तियां है, भले चुप बैठे हैं पर हमको पता है कुछ न कुछ सोच रहा है, भले कोई पैदल कर रहा है कहीं जा रहा है फिर भी कुछ चल रहा है, कहां जाना है वो उसको पता है। इसीलिए जब हम समझाते हैं ना किसी को, तो परमात्मा के पास जाने के लिए भी रास्ता मालूम होना चाहिए। तो शरीर से भी किसी जगह में जाना हो तो एड्रेस तो मालूम होना चाहिए ना, कैसे जाना है, कहां जाना है। तो ऐसे ही मन को भी शिव बाबा के पास जाने के लिए एड्रेस जरूरी है। इसीलिए इनको आत्मा का नाम, रूप, काल, गुण, कर्तव्य सब कुछ बताना पड़ता है, जो हमको कुछ नहीं पता था। तो इसीलिए एक मुख और है आत्मा का, जिसमें मन भी है, बुद्धि भी है, संस्कार है। तो रोज जो मुरली सुनते हैं ये कौन सुनता है, मन सुनता है या बुद्धि? जो कहते हैं मन सुनता है वो हाथ उठा है, देखो ना थोड़े से। तो बुद्धि सुनता है। तो जो आप किसी को कुछ बोलते हैं वो सुनता नहीं है, तो उनको कहते हैं क्यों, बुद्धि नहीं है क्या, ऐसा कैसा किया आपने? तो बुद्धि जी ही सुनती है। तो इसी प्रकार हम आत्माएं भले चुप भी रहेंगे मन से भी, पर बुद्धि जो है उसको पता है मैं चुप भी क्यों बैठा हूं। भले चुप लगता है आपको पर बुद्धि तो चल रही है। मन को तो चुप कर दिया आपने, कहा नहीं चुप रहो, पर बुद्धि जानता है कि भाई मैं क्यों चुप बैठा हूं। तो इसीलिए हम बच्चे भी बाबा के सामने बैठे हैं, चुप बैठे हैं, तो मन यहां वहां जाने नहीं दे रहे हैं, उसको हम पकड़ के बैठे हैं, तभी हमारी बुद्धि में बैठ जाता है। पर मन भटकता है तो बुद्धि को भी नहीं बैठता है। तो इसीलिए बुद्धि भी अपना काम करता है पर वो थोड़ा गंभीर है, वो सोचता है। कई बार जो मन है ना अपना ऐसा चेक कर देता है तो हमको भी लगता है कि भाई मुझे तो ये सोचना नहीं चाहिए था, मुझे तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए था। तो कभी कभी बुद्धि मन को बोलता है कि देखो मैंने समझाया तुमको ये ठीक नहीं कर रहे हो, पर मन सुनता नहीं है। इसको कहते हैं कि अंदर ही अंदर हमको कभी कभी कॉन्शियसनेस कहते हैं बड़े शब्दों में, कि भाई अंदर हमारी भी एक ऐसा है कि भाई ये ठीक है ये ठीक नहीं है, बोलने वाला एक बेटा है, एक बाहर का जज नहीं है, जज अपने अंदर ही है, हर एक के अंदर है। तो इसीलिए हम सबको थोड़ा सा कभी भी कोई भी बात आती है, पहले मन में आता है, उसको एक सेकंड आप वेट करो, तुरंत नहीं बोलो, बहुत फर्क दिखेगा आपको। क्योंकि एक बार बोल दिया तो समझो वो ठीक नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, अभी बोल तो दिया। तो कहते हैं कि भाई जो बाण निकल गया तो निकल गया, तो मन ने कुछ सोच लिया तो फिर क्या कर सकते हैं। इसीलिए जो शांत स्वरूप होते हैं तो वो एक बहुत बड़ा गुण है। तो इसलिए बाबा ने उस दिन कहा, साकार बाबा ने, कि साइलेंस इज गोल्ड बोला। तो बाबा को वो साइलेंस बहुत अच्छा लगा। तो हम बाबा के बच्चों को भी अभी इस समय पर दुनिया में बहुत हमने बोल चुके, बोल बोल तो बहुत हो गया है, परंतु अब जो समय इस यहां जो आप सभी आए हैं, एक प्रतिज्ञा करके जाना है। अभी तक तो हमने इस दुनिया को बातों से चलाया, शब्दों से चलाया, मन में जो आया तुरंत कर लिया, पर अब मैं तो कभी कभी देखता हूं कोर्ट में केस एक ही होता है पर दो वकील होते हैं, बेचारा वो जज बैठे सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है, बहुत कम बोलता है जज, तो क्या हाल होता होगा उनका सुन सुन के। तो ऐसे ही इस समय पर हम बच्चों को भी अंतर्मुखी सदा सुखी जो कहते हैं वो अनुभव से कह रहे हैं, तो हम बच्चों को इस समय पर सुनने की आदत ज्यादा, बोलने का कम। संसार चलाने के लिए भगवान बैठा है, हमको संसार नहीं चलाना है। तो हम जितना जरूरत है, क्यों? क्योंकि आत्मा में साइलेंस से जो शक्ति आती है, शरीर का नहीं, शरीर के लिए खाना पीना विटामिन ये वो इंजेक्शन सब लेना पड़ता है, पर आत्मा के लिए सबसे श्रेष्ठ शक्ति जो है वो पावर ऑफ साइलेंस कहते हैं हम लोग। हम जितनी शांति में रह सकते हैं तो हमारे अंदर जो शक्ति आती है, साइलेंस पावर, सभी शक्तियों का मदर कहते हैं उसको, साइलेंस इज मदर ऑफ ऑल पावर्स। ऐसा तो हम साइलेंस में कुछ भी सोचते हैं करते हैं वो सफल होता है। गुस्सा भी आता है ना, हमारे से पूछते हैं भाई गुस्से के बिना कारोबार कैसे चलेगा, नौकर को कैसे चलाए हम, तो हम कहते हैं कि आप चुप रहने में भी बहुत कुछ हो जाता है। नौकर भी कई बार देखेंगे आज तो साहब मुझे से बोल ही नहीं रहे, चुप है, तो उसके अंदर ही एक शुरू हो जाता है। तो कई बार आप एक सेकंड के लिए भी थोड़ा सा अपना मुंह मोड़ देते हैं तो गुस्सा ठंडा हो जाता है। बहुत सहज उपाय है जो क्रोध से थोड़ा सा कम होने के लिए, जैसे आया वैसे तुरंत करते हैं तो वो क्या रूप में आता है मालूम नहीं, हाथ पांव चल जाता है, इसके बाद पछताते रहते हैं, वो सही है नहीं है उसके लिए भी कोई हो ही गया, अभी क्या किया जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि साइलेंस ऐसी चीज है जो हम लोगों को सहज, बाबा कहते हैं सहज योगी, तो हम कई बार बाबा को कहते थे बाबा ये सहज योग कहाँ है, योग तो बड़ा मेहनत लगता है, 8 घंटा के योग करो और मन तो चलता रहता है, कितना मुश्किल है, आप बाबा सहज योग कह रहे हैं। सहज उनके लिए है जो 1 सेकंड कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा अपने को मुख मोड़ देते हैं तो उसको साइलेंस पावर कहते हैं। वो साइलेंस पावर एक इतनी पावरफुल है वो, तो क्रोध भी 1 सेकंड में दूसरा रूप आ जाता है, साइलेंस में आ जाता है, सोचने की उसको एक मार्जिन मिल जाता है। तो अंतर का जो मन है, एक तो अपना मन है, दूसरा जो है बुद्धि, तीसरा भी जो है वो भी थोड़ा सा ज्यादा ही काम करना शुरू कर दिया है आजकल, कलयुग में संस्कार कहते हैं। ये क्या चीज है? तो जैसे कहते हैं ना, आप कौन है तो अपना स्थूल परिचय देते हैं ना, मैं इस धर्म का हूं, इस जात का हूं, मैं ये हूं वो हूं, ये सब जो है ना ये संस्कार है। तो इससे भी थोड़ा सा अभी ऊपर उठने का जो है, मैं साइलेंस आत्मा हूं, ये संस्कार आने में टाइम लगता है। अरे शिव बाबा का बच्चे हैं हम सब, बाबा के बच्चे बैठे हैं, हमारा तो आइडेंटिटी जो परिचय है वो पूरा बदल गया। अब जो हम लोग विजिटिंग कार्ड जो बड़े बड़े बना लेते थे वो तो सब बदल गया अभी। तो ये जो है परिचय जो हमारा वो पक्का होना चाहिए कि बाबा कहते थे कि बैज इसीलिए पहनो, कम से कम देखने वालों को तो मालूम पड़े कि आप कोई और है। सफेद ड्रेसदारी वो तो है ही है, ये तो सब सफेद वस्त्रधारी है, और दूसरा टाइटल ये ओम शांति वाले हैं। हम शांत हो या ना हो, क्योंकि सुनाने में जो आनंद आता है, जो इतना बाबा ने ज्ञान दे दिया दुनिया में किसी के पास नहीं है, परंतु अब जो समय इस कलयुग में जो चल रहा है, जैसे पहले विनाश विनाश हम बोलते थे, अब ब्रह्मा कुमार कुमारियां अभी विनाश नहीं बोलते हैं, कोई भी नहीं बोलते हैं। क्यों? पहले बोलते थे, बहुत बोलते थे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, माना ये इनों का तो बस एक ही ये है कि विनाश होगा विनाश होगा, पर अब हम नहीं बोलते हैं। क्यों? टीवी खोलो विनाश, पेपर देखो हेडलाइन भी विनाश का, तो दुनिया ही अभी बोलने शुरू हो गए हैं कि अभी किस वक्त अमेरिका रशिया का कहीं शुरू हो जाए। 1 सेकंड लगता है, बाबा ने कहा विनाश के लिए तो 1 सेकंड लगता है, तो इसीलिए किस सेकंड बंदरों की बटन दबा देंगे कुछ पता नहीं पड़ता है। तो इसीलिए अभी हम नहीं बोलते हैं, फिर हम क्या बोले अभी? तो अब जितना चुप हम रहेंगे वही हमारी शक्ति है अभी, पावर ऑफ साइलेंस। अंतर्मुखी बाहर मुखी नहीं है। तो मैंने एक दिन मम्मा से पूछा, मम्मा आप सारा दिन क्या करते हैं? मामा बेंगलोर में आई थी, हमारे साथ थी, तो मामा ने कहा तो मैं यहां कहां रहती हूं? तो मामा हम तो देख रहे हैं आपको, आप तो यहीं है, सुबह क्लास किया, शाम को क्लास किया, सारा दिन तो आप यहां ही है। तो मामा कहती है मैं यहां नहीं हूं। तो फिर मामा कहां रहती है? तो मामा ने कहा जब काम होता है तो मैं यहां आती हूं, जब काम नहीं है तो मैं बाबा के पास रहती हूं। सब ये हम सबको पता है कि भाई हमको वापस जाना है, बाबा के पास जाना है, परमधाम से आए हैं, फिर भी सुबह से शाम तक यहां ही रहने की जैसा काम करते हैं हम लोग। ऐसा किसी को नहीं लगता है बाहर वालों को कि भाई हम यहां नहीं रहने वाले हैं, हम वहां है नहीं। तो मम्मा से हमने ये सीखा कि वहां रहना है। तो हमने हंसते हंसते मम्मा को कहा कि मम्मा तो आपको ऐसा लगता होगा कि भाई मैं तो अभी राधा बनूंगी, राधा बनूंगी, आप शायद इस खुशी में रहते होंगे। तो मम्मा ने कहा नहीं, बाबा तो हमको अभी मिला है, इस जन्म में मिला है, आगे जो भी होगा देखेंगे, पर अब तो मैं बाबा के साथ रहती हूं, स्वयं परमात्मा के साथ मैं रहती हूं। तो हम सबको किसके साथ रहना है? एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो जितना हम बाबा के साथ रहेंगे इसको अंतर्मुख कहा जाता है। बाहर तो देखते ही है, सब कुछ दिखता है हमको। तो इसीलिए आज मुझे इन्होंने कहा आपको इसी बात पर कहना है, तो मुझे खुशी हुई। तो मम्मा ने एक बात और एक दिन कहा था, तो मम्मा से थोड़ा सा मैं बच्चा था, तो मम्मा आज मेरा मूड ऑफ है, इन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा हो गया, तो मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया है। तो मम्मा ने सुनी, तो मम्मा ने पूछा कि भाई आपका रूम में लाइट है? तो मैंने कहा हाँ। तो स्विच कहाँ है? तो अंदर है या बाहर है? तो मैंने कहा अंदर है, बाहर क्यों? तो फिर ये तेरा मूड जो है वो ये बाहर इसका स्विच रखा है क्या तुम, जो कोई भी आया और आपका मूड ऑफ कर दिया? और वो दिन आज के दिन मेरी मूड दूसरा नहीं ऑफ कर सकता, ऑफ करेंगे तो मम्मा की याद आ जाती है मैंने स्विच बाहर रखा है क्या, तो इसने इसको ऑफ कर दिया एक मिनट में। तो हम सबको यही प्रैक्टिस करना है कि भाई मैं कितना समय अपने आप को साइलेंस में रह सकता हूं, तो उसका थोड़ा सा आनंद आप यहां अभी है आज के दिन, तो बाबा से मिलने तक हम सभी इसी का ही अभ्यास करते रहेंगे, ऐसे आशा करता हूं। और अभी तो हमारी आशा दीदी का भी क्लास है, आप सुनेंगे, तो दो मिनट हम सभी अभी बाबा की याद में जाएंगे, और आप सभी भी अभी कहाँ हैं, कहाँ हैं? तो हमारे एक अति प्यारे अति मीठे नलिनी दीदी जी थे, आप जानते हैं कि घाटकोपर मुंबई में, उनके साथ एक भाई विशेष सेवा में अनन्य भाई हमारे निकुंज भाई थे, तो उनको हमारे नलिनी दादी जी थोड़ा गीत सुनाते थे, जिससे इनका लाइफ में बहुत उन गीतों से परिवर्तन होता था। तो उनको भी दिल होता है कि कभी कभी उन्होंने जो अपने जीवन में परिवर्तन किया हुआ जो गीत जो सुनते थे तो वो आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करेंगे। आप सभी बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।
ये अंतर्मुखता का आकर्षण है या वाणी का, क्लास में देख रहे हैं हम बहुत अच्छी संख्या मौजूद है और अभी हमारे बीच हमारे अगले वक्ता पधारे हैं। उसके पहले मीडिया विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र मुंबई निकुंज भाई हमारे बीच बैठे और आप सेवाएं देते हैं पूरे महाराष्ट्र में, देश विदेश में भी। आपके अभी वो बता रहे थे कि हजारों की संख्या में एक स्तंभ आप लिखते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन मन गुनगुनाने का भी करता है। एक बहुत अच्छा गीत आप सबके लिए लाए हैं, प्रेरणादायी है और सुनाने जा रहे हैं।
तो
अभी सुबह करुणा भाई को सुना है।
मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा न खोगेगी।
ओम शांति। आप सभी ने बहुतों ने सुना ही है, गीत नहीं अपितु मैं कहूंगा एक पाठ है हम लोगों के लिए। मैं अकेला ही नहीं गाऊंगा, आप सभी को भी गाना है। ये जो एक लाइन बीच में आएगी, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई, वो आपको गाना है। गाएंगे ना सभी? दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। जीवन फंसी थी कैसे बीच भंवर में, पार किया रे देखो कैसे खिवैया ने, खिवैया के आगे चले ना माया जोर। मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। मधुबन में आए देखो बाबा से मिलने, बाबा से मिलने प्यारी मुरली को सुनने, मुरली है हमारी जीवन की बागडोर। गाओ। मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। दुनिया में छाया देखो आज अंधेरा, दर दर भटके आत्मा ढूंढे सवेरा, बाबा देखो आए बांधी है जीवन डोर। गाओ। मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। प्यारे बाबा देखो कैसे मुरली सुनाए, मुरली की मीठी धुन पर मनवा नाचे गाए, बाप दादा प्यारे प्यारे है उनके बोल।
मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई।
मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई।
दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, बोलो सभी। दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई।
प्रभु का वरदान वरदान है योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वरदान है दिल की दुआएं वो पाए सभी का हर दिल का अरमान है योगी जीवन बड़ा ही प्यारा सिरत की वो है सूरत त्याग तप की वो है मूरत प्रभु सिरत की वो है सूरत हर बंधन से मुक्त वो रहता वो तो गुणों की खान है योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वरदान है योगी जीवन बड़ा ही